ప్రభుపాదుకి, అనంతకోటి వైష్ణవృందుకి, నామాచార్య శ్రీహరిదాస్ ఠాకూర్కి, ప్రేమసిగహుజా శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర్ శ్రీవాసాది గౌరభక్త వృందుకి, శిశిగోప్ గోపినాథ్ శ్యామ్ కుండ రాధాకుండగిరి గోవర్ధన్కి, మథురాధామ్కి, ద్వారికాధామ్కి, ద్వారికాధీశికి, పురుషోత్తమ్ క్షేత్ర జగన్నాథ్పురి ధామకి, జగన్నాథ్ బల్దేవ సుభద్రామయ్యకి, అయోధ్యాపురి ధామకి, సీతారామ లక్ష్మణ హనుమానికి, నవద్వీప్ మాయాపురి ధామకి, గౌరాంగ్ నితాయ్ మహాప్రభుకి, యుగ్ధర్మహరి నామ సంకీర్తనకి, ఆల్ గ్లోరీస్ టు అసెంబ్లీ గురు, ఆల్ గ్లోరీస్ టు అసెంబ్లీ, ఆల్ గ్లోరీస్ టు శ్రీ గురు అండ్ శ్రీ గౌరాంగ్. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయే నష్టప్రాయేషు అభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే. నెక్స్ట్, భక్తిరభవతి నైష్టికీ కృష్ణాయ వాసుదేవాయ దేవకీ నందనాయ చ నంద గోపకుమారాయ గోవిందాయ నమో నమః. నమో పంకజనాభాయ నమో పంకజమాలినే నమో పంకజనేత్రాయ నమస్తే పంకజాంగ్రయే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. శీల ప్రభుపాదకి तो आज हम वासुदेव की स्तुति जो कि श्लोक नंबर है 19 उसको आगे बढ़ाएंगे. तत्व अस्य जन्म स्थिति संयमाना विभु వదంత్యనిహాద అగుణాద విక్రయాద్ త్వయీశ్వరే బ్రహ్మణి నో విరుధ్యతే త్వదాశ్రయవద్ ఉపచర్యతే గుణే తతో అస్య జన్మ స్థితి సంయమానం విభూ వదంతి అనిహాత గుణాద విక్రయాత్ ತ್ವಯೀಶ್ವರೆ ಬ್ರಹ್ಮಣಿನೋ ವಿರುಧ್ಯತೆ ತ್ವದಾಶ್ರಯವತ್ ಉಪಚರ್ಯತೆ ಗುಣೇ. ತತ್ವಸ್ಯ ಜನ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಸಂಯಮಾನ ವಿಭೂ ವಿದಂತಿ ಅನಿಹಾದ ಗುಣಾದ ವಿಕ್ರಯಾತ್ ತ್ವೈಶ್ವರೆ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ನೋ ವಿರುಧ್ಯತೆ ತ್ವದಾಶ್ರಯತ್ವಾದುಪರಚರ್ಯತೆ ಗುಣೇ. ತತ್ವಸ್ಯ ಜನ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಸಂಯಮಾನ ವಿಭೂ ವದಂತಿ ಅನಿಹಾದ ಗುಣಾದ ವಿಕ್ರಯಾತ್ ತ್ವೈಶ್ವರೆ ಬ್ರಹ್ಮಣಿನೋ ವಿರುಧ್ಯತೆ ತ್ವದಾಶ್ರಯತ್ವಾದುಪಚರ್ಯತೆ ಗುಣೇ. ತ್ವದಾಶ್ರಯ ಜನ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಸಂಯಮಾನಂ ವಿಭೂ ವದಂತಿ ಅನಿಹಾದ ಗುಣಾದ ವಿಕ್ರಯಾತ್ ತ್ವೈಶ್ವರೆ ಬ್ರಹ್ಮಣಿನೋ ವಿರುಧ್ಯತೆ ತ್ವದಾಶ್ರಯತ್ವಾದ್ ಉಪಚರ್ಯತೆ ಗುಣೇ. ಮಾತಾಜಿ ತತ್ವಸಿ ಜನ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಸಂಯಮಾನಿನೋ ವಿಭೂ ವದಂತಿ ಅನಿಯಾದ ಗುಣಾದ ವಿಕ್ರಯಾತ್ ತ್ವಯೈಶ್ವರೇ ಬ್ರಹ್ಮಣಿನೋ ವಿರುಧ್ಯತೆ ತ್ವದ್ ಆಶ್ರಯತ್ವಾದ್ ಉಪಚರ್ಯತೆ ಗುಣ ತ್ವತ ಆಪ್ಸೆ ಅಸ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಗತ್ ಕೀ ಜನ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಪಾಲನ ಸಂಯಮಾನ ತಥಾ ಸಂಹಾರ ವಿಭೋ ಹೇ ಪ್ರಭು ವದಂತಿ ವಿದ್ವಾನ್ ವೈದಿಕ ಪಂಡಿತ್ ಕಹತೆ ಹೇ ಅನಿಹಾತ ಪ್ರಯತ್ನ ಸೆ ಮುಕ್ತ ಅಗುಣಾತ ಪ್ರಕೃತಿ ಕೆ ಗುಣೋ ಸೆ ಅಪ್ರಭಾವಿತ್ ಅವಿಕ್ರಿಯಾತ ಆಪ್ಕಿ ದಿವ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಮೇ ಸ್ಥಿತ್ ರಹನೆ ವಾಲೆ ತ್ವಯಿ ಆಪ್ ಮೇ ಈಶ್ವರೇ ಭಗವಾನ್ ಮೇ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಮೇ ನೋ ನಹಿ ವಿರುಧ್ಯತೆ ವಿರೋಧ ಹೋತಾ ಹೇ ತ್ವತ ಆಶ್ರಯವತ್ ಆಪ್ಕೆ ದ್ವಾರಾ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಹೋನೆ ಸೆ ಉಪಚರ್ಯತೆ ಅಪ್ನೆ ಆಪ್ ಚಲ್ತಿ ಹೇ ಗುಣೆ ಗುಣೋ ಕೆ ಕಾರ್ಯಶೀಲ ಹೋನೆ ಸೆ. ಹೇ ಪ್ರಭು ವಿದ್ವಾನ್ ಪಂಡಿತ್ ಕಹತೆ ಹೇ ಕಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವ ಕಾ ಸೃಜನ್ ಪಾಲನ್ ಏವಂ ಸಂಹಾರ ಆಪ್ಕೆ ದ್ವಾರಾ ಹೋತಾ ಹೇ ತಥಾ ಆಪ್ ಪ್ರಯಾಸ ಸೆ ಮುಕ್ತ ಹೇ ಪ್ರಕೃತಿ ಕೆ ಗುಣೋ ಸೆ ಅಪ್ರಭಾವಿತ್ ತಥಾ ಅಪ್ನಿ ದಿವ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಮೇ ಅಪರಿಣಿತ ರಹತೆ ಹೇ ಆಪ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಹೇ ಆಪ್ ಮೇ ಕೋಯಿ ವಿರೋಧ ನಹಿ ಹೇ ಪ್ರಕೃತಿ ಕೆ ತೀನೋ ಗುಣೋ ಸತೋ ರಜೋ ತಥಾ ತಮೋ ಆಪ್ಕೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮೇ ಹೇ ಅತಃ ಸಾರಿ ಘಟನಾಯೇ ಸ್ವತೆ ಘಟಿತ ಹೋತಿ ಹೇ. ತಾತ್ಪರ್ಯ ಶೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೀ ವೇದೋ ಮೇ ಕಹಾ ಗಯಾ ಹೇ न तस्य कार्य कारण च विद्यते न तमस्य अभिध्यक्ष्य च दृश्यते परस्य शक्तिर विविधे श्रुत्वे स्वभाविका ज्ञान बल क्रियाश्च। भगवान को न तो कुछ करना होता है और न कोई उनके तुल्य है, न उनके बढ़कर ही है, क्योंकि सारी घटनाएं उनकी अनेक शक्तियों द्वारा स्वतः सुचारू रूप से घटित होती रहती है। श्वेता श्वेतर उपनिषद 6.8। सृजन, पालन तथा संहार, इन तीनों का संचालन भगवान स्वयं करते हैं और इसकी पुष्टि भगवत गीता में भी की गई है। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। अंतगत्वा भगवान को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए वे निर्विकार अर्थात अपरिवर्तनीय कहते हैं, कहलाते हैं। क्योंकि हर घटना उनके निर्देशानुसार होती है अथा वे सृष्टिकर्ता कहलाते हैं, इसी तरह वे संहार के स्वामी हैं। जब स्वामी एक स्थान पर आसीन रहता है और उनके नौकर विभिन्न कार्यों करते रहते हैं तो वे जो भी काम करते हैं वे अंतः स्वामी का कार्य ही होता है, यद्यपि वह कुछ भी नहीं करता। न तस्य कारण कार्य च विद्यते। भगवान की शक्तियां असंख्य है, अतः सारी घटनाएं सुचारू रूप से घटित रहती है। भगवान स्थिर है और इस भौतिक जगत में किसी भी वस्तु के प्रत्यक्ष करता नहीं है। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुक्त पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सगणललिता श्री विशाखा विशांतं। नमो विष्णुपादाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरव। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम श्रील प्रभुपाद की। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जितने भी भक्तगण हैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे गुरु महाराज हमेशा कहते हैं कि जो भी ये भागवतम क्लास या जो भी कथा श्रवण कर रहे हैं वो बहुत भाग्यशाली जीव है और कोई सामान्य जीव नहीं है। और ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो आप जो जीव है यहां पे सब बैठे हुए है ये बहुत बहुत भाग्यशाली है। कभी अपने आप को सामान्य नहीं समझो, क्योंकि बहुत जन्मों के प्रतीक्षा के बाद हमें ये अवसर प्रभुपाद और परंपरा के कारण मिल रहा है। और इस अवसर को हमें बहुत सीरियसली लेना चाहिए, खास करके ये जो भागवतम क्लास है। इसलिए यहां पे जितने भी वरिष्ठ लोग हैं उनसे भी मैं आज्ञा लेना चाहता हूं कि आज अगर ये मैं बोल रहा हूं तो ये मेरी शुद्धि के लिए बोल रहा हूं। इसमें सबसे बड़ा लाभ मेरा होने वाला है और किसी का होने वाला नहीं है जब हम भागवत कथा करते हैं और श्रवण करते हैं। तो अगर कुछ चूक हो जावे बोलने में या करने में, तो उसके लिए पहले से ही वरिष्ठ लोगों से मैं क्षमा मांगना चाहता हूं। तो ये जो विषय है, सबसे पहला हमें समझना चाहिए कि ये भागवतम ये कितना जरूरी है हमारे लिए। ये जो आज जो अभी ये कथा चल रही है तत्व, जैसे कल चल रहा था कि भाई सिद्धांते ना करिए आलस, कि आपको सिद्धांत में आलस नहीं करना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, तो हमारी श्रद्धा दृढ़ होती है। और फिर हमारा जो विषय कल हुआ था वो बुद्धि पे हुआ था, चार प्रकार की बुद्धि, और फिर लास्ट में गौर गोविंद महाराज की कथा हुई कि कैसे प्रभुपाद की आज्ञा के अनुसार वो भुवनेश्वर गए और उन्होंने कैसे अपने जीवन समर्पण किया। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हम जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं उनका एक विशेष विशेष जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ हम यहां पर बैठे हुए, कि जब तक ये कथा श्रवण का महत्व नहीं समझेंगे और कितना इंपॉर्टेंट है वो नहीं समझेंगे, तब तक इसको हम बराबर अपने जीवन में उतार नहीं पाएंगे। बहुत सारे जीव बहुत दुखी पड़े हुए बाहर, बहुत दुखी पड़े हुए, और बहुत जन्मों के बाद हमें अवसर मिला है कि चैतन्य महाप्रभु और भगवान प्रभुपाद का ये मूवमेंट को हम आगे बढ़ावे, और आप सब उसके एक बड़े बड़े सैनिक हो, और सैनिक होने के नाते हमारा लड़ाई 24 घंटा माया के साथ है, 24 घंटा। और जैसे लड़ाई में जो जाता है उसको अस्त्र शस्त्र कवच सब होना चाहिए उसके पास, उसका खुराक होना चाहिए बराबर, तब जाके वो लड़ पाएगा। तो ये जो कथा है इसको कथा अमृत कहते हैं, तव कथा अमृतम तप्त जीवनम। तो ये जब कथा जाएगी तो हमारा एक खुराक आत्मा का बढ़ेगा और तब जाके हम युद्ध कर पाएंगे। प्रभुपाद इस मंदिर को एक हॉस्पिटल भी बताते हैं, जहां पे ये जितने भी पेशेंट है उनका हम इलाज कर रहे हैं, खास करके जो मानसिक जो बीमारी है उसका इलाज हो रहा है यहां पे। और इसको यहां पे कहते हैं युक्त प्रदायिनी, ये अपना प्रदायिनी हॉस्पिटल, वैराग्य युक्त। कैसे वैराग्य युक्त हमें रहना चाहिए, ये हॉस्पिटल का नाम है। और सब पेशेंट का नाम क्या है? दुखी दास। और उसका पता क्या है? तो बताया कि भाई माया नगरी भवसागर और रूम नंबर 420। तो उन सबका हमको इलाज करना है और ये जिम्मेदारी हमको मिली हुई है। तो ये जिम्मेदारी करने के लिए आज जो ये हम तत्व बोलते, तत्व तत्व समझना चाहिए। तो ये तत्व क्यों समझना है? तो भगवान पहले ही बताते हैं भगवत गीता में चौथे अध्याय, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वत त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। तो यहां पे जो भागवतम में हर श्लोक में कृष्ण प्रेम है, कृष्ण है। कहते हैं कि जब भगवान स्वधाम गए तो ये भागवत छोड़ के गए हम जैसे दुखी लोगों के लिए, प्रकाश देने के लिए। तो यहां पे हर श्लोक में कृष्ण तत्व, कृष्ण प्रेम, कृष्ण रस है और उसे हमें ग्रहण करना है हमारे जीवन में। और हमारे हृदय में जब तक करुणा नहीं आएगी, भवसागर में जो लोग दुखी है तब तक ये हम ग्रहण नहीं पाएगा। राधानाथ महाराज हमेशा एक कथा कहते, करुणा भौतिक भौतिक कथा, एक सिंधुताई माता की, सिंधुताई महाराष्ट्र में एक लेडीज हुई है, उसने अनाथालय चला रही है और कितने अनाथ बच्चों का उसने उद्धार किया है। लेकिन उसकी कथा जब राधानाथ महाराज बताते हैं कि कहां से शुरू हुई है उसकी ये जीवन, उसमें वो करुणा कहां से आई, तो कहते हैं कि जब वो गांव में रहती थी वो, तो वहां का एक माफिया था, वो सब को काम में लगाता था औरतों को, और कुछ भी पैसे नहीं देता था। और इसने, वो बच्ची थी लेकिन शादी एक 30 साल की उम्र के आदमी से हुआ था, और उसने उस माफिया के साथ में दूसरे को भी किया कि हम नहीं करेंगे तुम्हारे लिए, उसने विरोध किया था, और उस विरोध के कारण उस माफिया ने सोचा कि अभी इसको हम सबक सिखाएंगे। उसने उसके पिता के पास, पति के पास गए और उसको बोला, ये जो लड़की है तुम्हारी, ये पत्नी, ये चरित्रहीन है, और इसके गर्भ में जो बच्चा है ना, ये वास्तव में मेरा बच्चा है, और ये क्या है, इसको करो। वो उसका पति सुन लिया और पेट में बच्चा है, लात मारने लगा उसको, लात मार मार के, बच्ची है वो भी, बेहोश हो गई, और बेहोश होके उसको गाय का जो गोठा है वहां पे डाल दिया कि भाई गाय चलेगी, उसको मार देंगे और सब लोग सोचेंगे कि वैसे ही मर गई। तो वहां वो गई, बेहोश थी, लेकिन जब थोड़ा बाद में होश में आया तो एक देखी कि गाय के नीचे वो खड़ी है और गाय रक्षा कर रही है दूसरे बैलों से उसकी, और उसी उसी दर्द में उसने बच्चे को भी जन्म दिया। उस दर्द में जब वो बच्चे को जन्म दिया तब वो रोने लग गई थी कि वास्तव में तो आज मृत्यु हो ही गई थी, और फिर उसके परिवार सबने त्याग कर दिया था उसका, और वो बच्ची को लेके गई और कहते कि स्मशान में रहती थी, और उसने उसी दिन कर दिया कि जैसे इसने मुझे बचाया है वैसे मैं भी जो दुखी लोग है उनको मैं बचाओगे, जो अनाथ है उनके लिए काम करोगे। तो राधानाथ महाराज बताते हैं कि उसकी वो जीवन, उसने इतने इतने कष्ट झेले, और फिर क्या कहे कि जितने भी दुखी थे बच्चे लाप जो, उन सबको वो पालन करने लग गई, उनको शिक्षण देने लग गई और उनका उनको एडुकेशन देने लग गई, और हजारों बच्चों का उसने उद्धार किया। तो एक दिन राधानाथ महाराज बताते हैं कि उसके पति खुद आए, मतलब कब, बहुत सालों के बाद, और देखा कि वो खुद भिखारी अवस्था में था और उसका कोई भी आश्रय नहीं था, और इसे मालूम नहीं कि ये सिंधुताई उसकी पत्नी है, लेकिन वो उधर आया और आश्रय मांगने लगा। सामान्य अगर कोई रहेगा तो अपना जितना भी दुख है उस पर डालेगा, लेकिन सिंधुताई माता ने, महाराज बताते हैं कि कैसे उसको पर करुणा की, क्या कहा कि उस टाइम पे मेरे पास कुछ नहीं था और मैं अनाथ थी, और मैं उस परिस्थिति में मैंने किया, आज तुम्हारी हालत वही है, लेकिन मैं आपके जैसा नहीं करूंगी, मैं आपको शरण दूंगी। उसने पति को माफ किया। तो महाराज बताते कि करुणा की शक्ति कैसे है, कि करुणा की शक्ति के कारण उसने उनको माफ किया, और करुणा की शक्ति के कारण जितने भी बच्चे थे उनका भी उसने पालन करके, और कितनी भी समस्या आई उस समस्या को उसने मित्र बना लिया। यह तो भौतिक उदाहरण बता रहा हूं मैं, तो वही उदाहरण हमें हमारे जीवन में लेना है।
हम भी जब तक करुणा नहीं रहेगी हमारे हृदय में, हम प्रचार नहीं कर पाएंगे, हम जो प्रचार में कष्ट आते हैं वो नहीं झेल पाएंगे। प्रभुपाद अपने गुरु महाराज की आज्ञा के कारण अमेरिका गए। पूरा जीवन आप पढ़िए उनके चरित्र में, सिर्फ दुखों से भरा हुआ, फेलियर से भरा हुआ है। और जब वो वहां गए अमेरिका में, तो वहां देखा कि ये कहां मेरे को भगवान लाए हैं, और कहते मुझे कठपुतली की तरह, भगवान आप जैसे नचाना है आप नचाइए। तो ये जो करुणा जब तक हम में नहीं आएगी, तब तक हम प्रचार नहीं करेंगे और जीवन को जितने भी लोग हैं उनका उद्धार नहीं कर पाएंगे। चैतन्य महाप्रभु ने हमें ये दिया है, प्रभुपाद ने दिया है, उस वस्तु को हमें आगे बढ़ाना है। और वो करुणा कब आएगी? जब हम हर वस्तु को, ये जो श्रवण है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्राय भक्ति लता बीज। और इस भक्ति लता बीज का सिंचन कहां से होता है? चैतन्य महाप्रभु बोलते श्रवण कीर्तन जले होई सिंचन। जब तक है हम बराबर श्रवण नहीं करेंगे, आत्मसात नहीं करेंगे, तब तक वो भक्ति हमारे हृदय में भी नहीं जागृत होगी। तो दूसरे के हृदय में जो भक्ति छुपी है उसको हमें जागृत करना है। प्रभुपाद ने हमें जो मिशन दिया है वो आत्मा का उद्धार करने का मिशन दिया है, और ये सबसे बड़ा मिशन है हमारे पास पूरे दुनिया में, इससे कोई और बड़ा मिशन है नहीं। प्रभुपाद कहते हैं कि अगर कोई आदमी डूब गया, आप उसके खाली कोट को बचा रहे हो और उसको नहीं बचा रहे हो, तो कौन सी बड़ी बात कर रहे हो आप? यहां पे जितने भी दूसरा करुणा दिखा रहे हैं वो उनके कोट को बचा रहे हैं, लेकिन हमें जो मिशन मिला है, हमें जो ये मिला है, ये जीवों का उद्धार करने का मिशन मिला है। और उसके लिए सबसे पहले हमारे हृदय में ये श्रवण कीर्तन बराबर होना चाहिए, और भगवान के हर वस्तु को तत्वतः समझने का प्रयास करना चाहिए। और भागवतम में क्या आता है तत्व? कि ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति, ये तीन तत्व है यहां पे बताया गया है। यहां पे ये भी हमें समझना चाहिए, जब वासुदेव ये कथा कह रहे हैं तो वो भी तत्व समझने का प्रयास करना चाहिए कि किस तरह वासुदेव स्वयं, देखो वासुदेव और देवकी जी के आप जीवन में देखोगे तत्वतः, तो उनको जब शादी के दिन तक कोई प्रॉब्लम नहीं था, शादी के दिन तक भी कोई प्रॉब्लम, उनको प्रॉब्लम का कारण स्वयं अभी उनके सामने खड़े है, कौन? भगवान। ना उस दिन आकाशवाणी होती और ना उनका कोई प्रॉब्लम चालू होता। वो आकाशवाणी होने के बाद उनके जीवन में कष्ट चालू हो गए, और कष्ट भी इतना लंबा चला, इतना लंबा चला कि उनके समक्ष उनके पुत्रों की हत्या हो रही है। और उस टाइम पे ये नहीं बोले भगवान देखो आपके वजह से हो रहा है सब, इतना कष्ट, अगर आपने वो आकाशवाणी नहीं करवाई होती तो इतना प्रॉब्लम ही नहीं आता था। तो भगवान जो भी भेजते हैं वास्तव में भक्तों की परीक्षा के लिए, क्योंकि भगवान भगवत गीता में 12वें अध्याय में स्पष्ट बताते हैं कि मेरा भक्त कौन प्रिय है। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्रेह करुण एवच निर्मम निरअहंकार समा दुख सुख शमी संतुष्ट सततम योगी यदात्मा दृढ़ निश्चय मई अर्पिता मनोबुद्धि यो में भक्त समय प्रिय। ऐसा भक्त मुझे प्रिय है जो कभी द्वेष नहीं रखता अपने हृदय में। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्रः करुणैवच, वो हमेशा भाव रखता है मित्रता का, करुणा का। मैत्रः करुणैवच निर्मह निरअहंकार, कि मेरा कुछ भी नहीं है सब कृष्ण का है, अहंकार नहीं है, ये फॉल्स ईगो नहीं है उसमें। निर्मम निरअहंकार सम दुख सुख शमी, भगवान आपको सुख भी देंगे, भगवान आपको दुख में भी डालेंगे, ये हमें मालूम पड़ता है, लेकिन भक्त उसमें सम रहता है, कभी भी कंप्लेंट नहीं कर रहा। यहां पे भगवान प्रकट हुए वो पहले कंप्लेंट चालू कर सकता था। एक बार एक आदमी है ना, डूब रहा था पानी के अंदर, तो उसमें एक आदमी ऊपर से कूदा किसमें? पानी में बचाने के लिए। वो कैसे भी करके उसको बचा के उस आदमी को लेके आया, लेकिन बाहर आया तो सब ताली बजा रहे थे, अरे वाह आपने आपने उस आदमी को बचा के लेके आया। तो बहुत गुस्से में था, लाल था, बोलता है सबसे पहले तो ये बताओ मेरे को धक्का कौन मारा, मेरे को धक्का कौन मारा। तो यहां पे वासुदेव कह सकते थे भगवान, भगवान आपने पहला आकाशवाणी क्यों किया, ये प्रॉब्लम मेरे को क्यों डाला, नहीं। लेकिन यहां में भी हम देखते कि स्तुति में भगवान की रक्षा का भाव है उनका, क्योंकि उनके समक्ष उनके सभी पुत्रों का हत्या हुई है और उस भाव में है कि इनकी भी अभी हत्या हो जाएगी कंस आएगा तो भले भगवान साक्षात रूप में है उनकी स्तुति कर, लेकिन अंदर से उनकी रक्षा का भाव है, अंदर से उनके प्रेम का भाव प्रकट हो रहा है, ना कि कंप्लेंट का भाव। यही भक्तों में रहना चाहिए, भगवान किसी भी परिस्थिति में रखे वो हमें प्रसाद समझ के ग्रहण करना चाहिए। और ये जो मूवमेंट है प्रभुपाद, हमारे आचार्यों के जितने भी आचार्य हुए हैं उनकी जीवन शैली देखो, हरिदास ठाकुर होवे या रूप गोस्वामी होवे या प्रभुपाद होवे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज होवे, या आज के हमारे गुरु महाराज के जीवन शैली देख लो, गोपाल कृष्ण महाराज देख लो, राधानाथ महाराज देख लो, राधा गोविंद महाराज देख लो, उनकी जीवन शैली देख लो, कैसे जयपताका महाराज इतने कष्ट होते हुए भी अपना जीवन 24 घंटा लगा के रखे। और एक बात भगवान बताते हैं, तत्व कैसे आपको समझ में आएगा, भगवत गीता के 4वें अध्याय में भगवान तत्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया, उस प्रणिपात रूप से जब आप गुरु के पास जाओगे तब जाके आपको ये तत्व सिद्धांत समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आने वाले, नहीं तो विरुद्ध है। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं अद्वैत्यम अच्युत्यम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभ अदुर्लभम आत्म भक्तो। आप ऐसे तत्व समझने का प्रयास करेंगे कभी नहीं समझ में आएगा, मगर जब तक हम भक्त नहीं बनेंगे तब तक ये तत्व क्या है वो नहीं समझ में आएगा। विरुद्ध तत्व यहां पे लिखा है, आप में कोई विरोध नहीं। अभी यही ये जो मैं अभी आपको श्लोक बोला ब्रह्म संहिता का, इसमें बताया है कि भगवान पुराण पुरुष है लेकिन फिर भी नव यौवनम है, विरुद्ध बात। एक बार गोपियों को यमुना क्रॉस करके दुर्वासा ऋषि के पास जाना था और भगवान यहां पे बैठे थे, बोले कैसे क्रॉस करें, भगवान ने बोल दिया यमुना माता को जाके बोलो कि मैं अखंड ब्रह्मचारी हूं, क्या हूं, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो गोपियां बोले पागल हो क्या, ऐसे में थोड़ा कोई देगा, बोले आप जाके बोलो। और वो वहां गई, यमुना माता से प्रार्थना की और यमुना माता ने तुरंत रास्ता दे दिया और वो क्रॉस होके चले गए। और जब वहां गए दुर्वासा ऋषि को भाव प्रेम से खिला रहे हैं, सब खा लिया, फिर इधर आना था। तो अभी दुर्वासा ऋषि से पूछे कि इस तरफ कैसे आवे, तो बोलो यमुना माता से कहो कि दुर्वासा ऋषि ने कुछ भी खाया नहीं। और इधर आ गए तो देखा तो भाई क्रॉस हो गया। तो ये जो विरोध भात जो हमें शास्त्र में दिखाई पड़ती है, यहां पे जो विरोध विरुद्ध शब्द, ये तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक भक्ति के हमारे अंदर आदो श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम, ये जो स्टेजेस है हमारे जीवन में एक एक करके आगे बढ़ेंगे। भगवान का ये जो ब्रह्म तत्व, भगवान का ये परमात्म तत्व, भगवान का जो ये भगवत तत्व, ये तब तक हमको नहीं समझ में आएगा जब तक हम हमारी भजन क्रिया बराबर नहीं कर। और वो भजन क्रिया कैसे करनी है, जो हमारे गुरु मार्गदर्शन बताते हैं उसके अनुसार हमें श्रद्धा के साथ उसको पालन करने का प्रयास करना चाहिए, तब जाके ये तत्व हमारे समक्ष आएंगे। भगवान बताते हैं कि मैं निराकार, 9वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि मैं निराकार रूप से सब में व्याप्त हूं, सब कुछ मुझ में है, अव्यक्तम। और फिर ये भी बोलता है भूत भृतनश्च भूतस्तो ममात्मा भूत भावना, 9वें अध्याय में, कि मैं सबका पालन करता हूं और मैं सब कुछ में हूं। अंडांतरस्थ परमाणु च अंतरस्थम, मैं सभी परमाणु के अंदर भी हूं। तो ये कैसे है, भगवान सबसे लंबे भी है सबसे पास भी है, ये भी भगवत गीता बताते हैं, परमात्मा रूप में पास रहते हैं। तो ये सब तत्व ये हमें लगते हैं बहुत कैसा हो रहा है, लेकिन जब हम शुद्ध भक्ति का बराबर से पालन करेंगे अपने आप, भगवान स्वयं बताते हैं मत चित्ता मदगत्ता प्राण बोधयंता परस्परम कथयंतश्च माम नित्य तुष्यंती च रमंती च तेषाम अहम अनुकंपार्थम अज्ञान जमतम नाश्यम आत्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। मैं ज्ञान देता हूं हृदय में, तो हमें उस वस्तु को भक्ति के रूप में जब हम करेंगे तब जाके भगवान के ये तत्व को हम समझ पाएंगे, नहीं तो कभी भी नहीं समझ पाएंगे। कि जन्म, जैसे यहां पे बताया गया है कि सृष्टि स्थिति प्रलय, तो ब्रह्मा जी बताते हैं सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छायेव यस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा इच्छा अनुरूपमपि यस्य च चेष्ट तेसा गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजा। ये जो दुर्गा शक्ति, भगवान बोलती मेरी छाया है और मेरे अनुसार चेष्टा करती है। मय अध्यक्षेण प्रकृति सूयते स चराचरम हेतुनाने न कौन्तेय जगद्वी परिवर्तते। ये मेरी अध्यक्षता में काम करती है ये, लेकिन ये सब को जानने का लाभ क्या है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वित। जो बुद्धिमान है ये जानता है कि मैं सभी वस्तुओं के उद्गम हूं और सब कुछ मुझसे आता है, और इस जान के वो भक्ति में लगता है और उसकी श्रद्धा दृढ़ होती है। तो यहां पे जो श्लोक है त्वयि ईश्वरे ब्रह्मणो न विरुध्यते, भगवान में कोई विरोध नहीं, हमारी समझ में विरोधाभास है, क्योंकि प्रकृति के जो तीन गुण है रजोगुण तमोगुण और सतोगुण, ये हमें चला रहे हैं, और जब तक इसके ऊपर नहीं आएंगे हम शुद्ध सत्व गुण में, हम भागवतम को नहीं समझ पाएंगे बराबर। इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि जो भक्ति के जो भी बारह, आप 12वें अध्याय में जाएंगे, भगवान बताते कितने कितने लक्षण बताते भक्त के, 12वें श्लोक से 20वें श्लोक तक, समाह शत्रु च मित्रे च तथा मान अपमानयो शीतो उष्णु सुख दुखेशु समाह संग विवर्जित तुल्य निंदा स्तुतिर मोनी संतुष्ट एन केनकित अनिकेत स्थिर मतिर भक्तिमान में प्रियो नर समाह शत्रु च मित्र च। ये गुण आना चाहिए हमें, अनपेक्षा सुची दक्ष उदासीन गत्वतः, हमारे में अन्य अभिलाषिता शून्य, कभी भी कोई अन्य अभिलाषा नहीं रहनी चाहिए भगवान की सेवा सिवा। और ये ध्यान रखना चाहिए कि हम बहुत एक स्पेशल जीव है जिनको ये सेवा मिली है, खास करके ये जो ब्रह्मचारी लोग को। एक बार एक राधानाथ महाराज का एक ब्रह्मचारी था, उससे पूछा गया भाई साहब वो कैसे ब्रह्मचारी, बोले बोलते हैं मेरी शादी करने की बहुत इच्छा थी, क्या बोला, और कम से कम 70 लड़की देखी मैंने, कितनी, और 70 भी लड़की ने जब रिजेक्ट किया मुझे, क्या बोला, तब मैंने सोचा कि मेरे भाग्य में ही शादी नहीं है। उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अभी ब्रह्मचारी बन जाऊं। तो भगवान का अपना एक विशेष हर जीव के लिए एक कार्य है। तो हमारा जो कार्य है ये भगवत प्रेम देना है। जीवों के अंदर जो प्रेम छुपा हुआ है उसको क्या करना है, हमें जागृत करना है। और उस जागृत करने के लिए हमारे पास में अस्त्र शस्त्र शास्त्र होना चाहिए। और उसको जागृत करने के लिए आपका प्रयास और आशीर्वाद दो वस्तु चाहिए। भगवान को बांधने के लिए यशोदा माता ने क्या किया था, 12 घंटा सुबह से, ये जो लीला चालू होती है मंथन की लीला कहां से होती है, सुबह से, और खत्म कहां होती है, शाम को। इसलिए तो शाम को दिया जलाते हैं, वासुदेव जी दिया लाए थे पहले देखने के लिए। तो पूरे 12 घंटा ये लीला चली, और 12 घंटा क्या कर रही थी यशोदा माता, सिर्फ और सिर्फ भगवान को बांधने का प्रयास कर रही थी। कमिटमेंट था, क्या था, ये करके रहूंगी करके रहूंगी। कितना फेलियर हो रहा है, कितने लोग गोपियां बोल रही है, अरे छोड़ो छोड़ो तुम्हारे बांधने के इसमें नहीं है, कृष्ण नहीं बन सकते हैं। तो भगवान की जब तक कृपा नहीं हो रही थी, जब देखा उनके प्रयास देखा, किसका, माता का प्रयास देखा, तब जाके भगवान की 12 घंटे के बाद कृपा हुई कि भाई हमें मंग, क्योंकि इतने अंदर तक 12 घंटा क्या हो रहा था। तो इसमें बहुत सारे आचार्य बोलते थे कि सभी शक्तियों में डिस्कशन चल रहा था भगवान की, क्योंकि सब शक्तियां बोल रहे थे ऐसा नहीं हो सकता है, हम नहीं बन सकते। लेकिन भगवान की एक शक्ति थी जिसका नाम है कृपा शक्ति, क्या थी, वो बोले नहीं बंधना पड़ेगा हमें, तो सब हार गई। तो जब तक भक्तों की और भगवान की कृपा नहीं मिलेगी, आप कितना भी प्रयास कर लो आपको जीवन में सक्सेस नहीं मिलेगा। कितना भी प्रयास कर लो ये भागवतम समझने का, ये तत्व समझने का, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, ये कैसे नाल में से निकले, ये ब्रह्मा जी निकले उसके अंदर, ये सृष्टि दिमाग में नहीं बैठता हमारे। एक बार एक आदमी नास्तिक था, बोलते ये सब खोटा है, ये सब माइथोलॉजी है। बोलता एक प्रूफ देता हूं मैं उसको, बोलते आपने कभी वारा रूप का फोटो देखा है क्या, हाँ, बोलते वो जल में खड़े हैं, किधर खड़े हैं, जल में खड़े हैं और पृथ्वी उनके दांत पे है। तो वो बोल रहा है पहला तुम ये बताओ जल किधर रहता है, पृथ्वी के अंदर रहता है कि पृथ्वी के बाहर रहता है, ऐसा आर्ग्यूमेंट दे रहा था वो। क्या, तो फिर उसको समझाना पड़ा कि भाई ये एक सागर नहीं है, बहुत सारे सागर होते हैं, ये गर्भोदक सागर पे खड़े है भगवान, किस पे, और ये जो सागर है, और हम भागवतम पढ़ते हैं तो हमको मालूम पड़ता है खाली यही सागर नहीं है, बहुत सारे सागर है। ये तो खारा सागर हमें दिखता है, मीठा सागर है, दूध का सागर, क्षीर सागर, मधु का सागर है, रस का सागर है, और वहां पे पहाड़ बोलते हैं जो गजेंद्र की स्तुति हम सुनते हैं, तो वहां पे जो त्रिकूट पर्वत है वो सोने चांदी का बना हुआ है। अगर आज के नेता लोग को मालूम पड़ा ऐसा पर्वत है तो बोले भागेंगे, बोले थोड़ा लेके आओ भाई। तो ये सब तत्व हमें नहीं समझ में आएंगे, हमारे दिमाग में नहीं बैठेंगे। आपको प्रयास करना है, क्या करना है, लेकिन साथ साथ में हमें कृपा की भी याचना करना है। रघुनाथ दास गोस्वामी जब वो राधा कुंड में थे, रोज सुबह सबसे पहले वो दंडवत, बोलते कि 1000 दंडवत होता था, क्योंकि जो भी मिलता था उसे दंडवत करते थे, कृपा करो कृपा करो। तो ये भागवत तत्व हमें लेना बहुत जरूरी है, ये समझना बहुत जरूरी है कि भगवान में ये विरोध बात कैसे नहीं है। अगुणात, इसमें क्या कहा है, उनमें गुणों का कैसे गुणात नहीं है, प्रकृति के तीन गुण भगवान स्वयं बताते हैं, सातवें अध्याय में बताते हैं कि भाई त्रिभिर गुणमय भावे रे भी सर्वम इदम जगत मोहितम ना भी जाना थी लोको मा मुझे। ये पूरा जगत तीनों गुणों से है लेकिन मुझे नहीं जान पाते। दैवी हैशा गुणमयी मम माया दुरत्या, ये जो माया है ये बहुत दुरत्या है लेकिन इसको कौन पार कर पाएगा। माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती थे, जो मुझे 100% सरेंडर होना चाहता है वही इस चक्कर से बाहर आ सकता है, नहीं तो नहीं आएगा। इसीलिए जो भी हमारे चैतन्य महाप्रभु ने तो स्पष्ट लिखा है, त्रिनाद अपि सुनिचेना तरोर अपि सही सुना अमानिना मान देना कीर्तन्य सदा हरि। अगर भगवान का हमें कीर्तन करना है तो ये तीन चीज को हमें गांठ बांध के रखना पड़ेगा, त्रिनाद अपि सुनिचेना तरोर अपि सही सुना, जो भी है सहन करो, अमानिना मान देना कीर्तन्य सदा हरि, ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम ना कविताम वा जगदीश काम्य, मम जन्मनी जन्मनी ईश्वरे भवता भक्ति अहे केतु अहेतु की भक्ति। और उस भक्ति में बाधा क्या है, रूप गोस्वामी बताते हैं, अति आहार प्रयासश्च प्रजल्प नियमाग्रह जनसंगस्य लौल्यम षड्भिर् भक्ति विनश्यति। ये छह वस्तु हमारी भक्ति को नाश करती है। अति आहार, आहार में हमें सबसे बड़ा कंट्रोल करना है और आहार का इंद्रियों का भी आहार कहा गया, अति आहार प्रयासश्च जो भी है उससे संतुष्ट रहने का प्रयास, अति आहार प्रयास प्रजल्प कभी भी कोई बात कृष्ण से संबंधित नहीं है मत करो, अति आहार प्रयासश्च प्रजल्प नियमाग्रह जनसंगस्य जो भक्तों का संग नहीं है उसके साथ संग मत करो, लौल्यम लौल्यम ऐसा घुस जाता है खास करके धन का लोभ स्त्री का लोभ, ये लोभ बहुत भयंकर है कभी भी नहीं छूटता है, लेकिन उस लोभ को रूप गोस्वामी बता दे कि छूट सकता है जब आप में भक्ति की सेवा करने का लोभ आ जाएगा, भक्ति के लिए लोभ आ जाएगा, भक्ति के कार्य करने का और जीवों को उद्धार करने का लोभ आ जाएगा तब जाके आप में ये लोभ निकल जाएगा। जब तक आपके पास ऊंचा गोल नहीं है, ऊंचा वो नहीं है, ब्रह्मचारी का गोल होना चाहिए सन्यास, क्या होना चाहिए सन्यास, तब जाके वो अच्छा ब्रह्मचारित्व मेंटेन कर, गृहस्थ का होना चाहिए कि उन्हें वानप्रस्थ लेना है और आगे चल के सन्यास, तब जाके वो अच्छा वैराग्य कर पाएंगे, नहीं तो नहीं होगा। नहीं तो हम क्लास करेंगे तत्व सुना, कभी कभी बोलते इस कान का मतलब, इस कान का मतलब इस कान से इस कान, क्या इस कान से इस कान, ऐसा नहीं होना चाहिए, हृदय में जाना चाहिए। और हृदय में जब तक हमारे पास एक ऊंचा गोल नहीं है हम नहीं घुसा सकेंगे सब वस्तु को हमारे हृदय में, प्रयास करना है, क्या करना है हमें और आशीर्वाद मांगना है। और सबसे बड़ी बात जो हमारे आचार्य बताते हैं, कभी भी वैष्णव अपराध मत करो, नाम अपराध वैष्णव अपराध धाम अपराध सेवा अपराध, इससे बचना है, नहीं तो यह तत्व नहीं घुसेगा हमारे इसमें और हमारी श्रद्धा नहीं बढ़ेगी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम। श्रील प्रभुपाद की। किसी का कोई प्रश्न है, 5 मिनट बाकी है, पूछ सकता है। कहते हैं कि दो प्रकार के लोग प्रश्न नहीं पूछते, एक तो बहुत बुद्धिशाली होते हैं वो और जो महामूर्ख है वो, और मेरे को नहीं लगता यहां पे ऐसा कोई है इसलिए प्रश्न पूछना चाहिए। ये स्वर्ग लोक में है, हाँ प्रभु जी पूछ रहे सोने के पर्वत किधर है भाई, और चांदी के किधर है, और दूध का सागर किधर है, इधर पृथ्वी पे तो नहीं है भाई साहब, ये ऊपर के लोगों में है, किधर है? और ऊपर के लोगों में जाने के लिए सबसे पहला तो सतोगुण लाना पड़ेगा आपके जीवन में। क्या लाना पड़ेगा? लेकिन उसका एक और प्रॉब्लम भगवान बताते हैं भगवद गीता में, कि आप सतोगुण कार्य करके अगर स्वर्ग लोकों में जाते हैं, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति, आपका जैसे पुण्य क्षीण होता है, मैं हमेशा बोलता हूं स्विट्जरलैंड पैकेज, क्या बोलते हैं, वहां जाते हो घूमते हो, जैसे पैकेज खत्म हो गया वही होटल वाले वही लोग धक्का मार के बाहर निकालते तुमको। तो आपके पुण्य जब खत्म होते आपको फिर इधर आना पड़ेगा। लेकिन महाप्रभु हमें बताते हैं कि हमें शुद्ध भक्ति स्तर पे जाना है, जहां हम गोलोक जावे, न तदभास्यते सूर्य न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम, उस धाम में जाना है जहां से वापस आना नहीं पड़ेगा। और उसके लिए हमें हमारे मूल स्वभाव में आना पड़ेगा, जीवेर स्वरूप होय कृष्ण नित्य दास। जब तक हम भगवान के दास रूप में और भक्तों के दास रूप में सेवा नहीं सीखेंगे, तब तक ये हमारा ये नहीं प्राप्त होगा। और उधर एडमिशन जो होता है ना गोलोक में, उधर 99.99 वाले को भी नहीं एडमिशन, इतना, क्योंकि उधर से कोई पोजीशन खाली नहीं होती है, वहां खाली दास का पोजीशन मिलता है। क्या मिलता है वहां? आप सबको परमानेंट पोजीशन मिल जाता है, कोई पोजीशन वहां पे कोई खाली नहीं है। तो दास का दास बनने का इधर पहले ट्राई करना पड़ेगा हमें, तब जाके कोई, हाँ गुरु महाराज हमारे जब प्रभुपाद से बात करेंगे कि ये भक्त ने अच्छी सेवा की है, प्रभुपाद इसको बुला लो, प्रभुपाद फिर जाके भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से बोलेंगे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज अपने गुरु महाराज से वहां बोलेंगे। ये सब मंजीरियां हैं कि भाई ये सेवा करने के लिए अच्छा आदमी, इसको बुला लो, प्रॉब्लम नहीं करेगा वहां पे, हेल्प करेगा हमारे, तब जाके उधर एंट्री है, नहीं तो यहीं रहने पड़ेगा हमें। पहले हमारे सब प्रॉब्लम दूर करो, यहां हैबिट दूर करो, ठीक है प्रभु?
ठीक है, धन्यवाद।
हाँ बोलिए प्रभु। हाँ, ये जो अनर्थ चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि जब आप श्रवण कीर्तन करते हो तो छह प्रकार के अनर्थ, मान पूजा प्रतिष्ठा लाभ निषेधाचार, हाँ ये सब, जैसे चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि जब आप कभी भी खेत करते हो तो साइड में वो भी उग जाते हैं, तो जब आप श्रवण कीर्तन करते हो तो ये घास फूस भी उगेंगे, और उसको बहुत ध्यान रखना है हमें, उसको हमें उखाड़ना है, और वो कैसे उखड़ेंगे, अच्छा संग करना है, क्या करना है, और अपने आप को एक सेकंड भी खाली मत रखो, एक सेकंड भी खाली नहीं रहना चाहिए, एक सेकंड भी, कुछ ना कुछ ऐसे बिजी बना के रखो अपना शेड्यूल कि आपके पास कोई टाइम नहीं है। श्रवण कीर्तन सेवा 24 घंटे लगे रहो, तब जाके वास्तव में, भगवान स्वयं बताते हैं, श्रुण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन रिदंतस्तो ही अभद्राणी विधनोति विदो सुदत्सिताम, श्रुण्वताम स्वकथा कृष्ण, ये कथा पान करना है तत्वत, जितने अच्छे वरिष्ठ भक्त है उनकी कथा सुननी है, जिससे हमारे हृदय में वो करुणा जागृत हो, हम हमारे मिशन में लगे रहे, तब जाके वासुदेव जी की ये जो भाव है ये हमें समझ में आएगा कि पुत्र अभी भी रक्षा का भाव है उनका, किसका, कि अभी आ जाएगा कंस और आपको मारेंगे, प्लीज आप छोटे हो जाओ, भले स्तुति कर रहे हैं लेकिन भाव है मन में यही, ये कैसे, और ये जो भाव है ऐश्वर्य मिश्रित भाव है, कौन सा भाव है, ऐश्वर्य मिश्रित भाव है। लेकिन जो इससे भी ऊंचा भाव चैतन्य महाप्रभु बताते हैं हमें, वो है माधुर्य भाव, जो है वृंदावन में, वहां यशोदा माता को जब विराट वो दिखाया उनके मुंह के अंदर, तो माता स्तुति करने लग गई, क्या करने लग गई, हे भगवान, ये भगवान को खुद को अच्छा नहीं लगा, बोलते ये रोल में प्रॉब्लम आ रहा है भाई, मेरे को यह स्तुति नहीं चाहिए, फिर से माया देवी योग माया को बुलाया और भुला दिया, बोले आप जैसे ओरिजिनल है। तो जो माधुर्य प्रेम में भगवान को भगवान नहीं मानते वृंदावन में, जब भगवान गोलो ये गोवर्धन उठा रहे थे तो सब आए, हम भी हेल्प करते भाई साहब थोड़ा थोड़ा, अरे थोड़ा है रखो नीचे रखो, तो भगवान बोले ठीक है, तो अरे अरे कृष्ण बचाओ बचाओ। जब सुदामा ये अपना सुबल सुबल थे उनके मित्र, जब उसने सुना कि कृष्ण ने इसमें मल्ल युद्ध में कंस को मार दिया, बोलते हो ही नहीं सकता, क्या बोला मैं रोज उसको हराता हूं, ऐसा कैसे वो कंस को कर दिया, बोलते तुम वो नहीं हो सकते हो, तो बोला ठीक है फिर से युद्ध करते, मतलब मल्ल युद्ध करते, तो मल्ल युद्ध किया भगवान और हार गया, हाँ बराबर तुम ही हो। तो वहां पे माधुर्य भाव है जो भगवान को अति प्रिय है, लेकिन द्वारका में मिश्रित भक्ति भाव है, ऐश्वर्य भक्ति वैकुंठ का भाव है। लेकिन हम बहुत फॉर्चुनेट है कि हमें जो परंपरा मिली है वो गोपी भरत अनु दास दास दासानु दास। गोपिया जब विरह में रो रही थी तब उस समय भगवान स्वयं चतुर्भुज रूप में वहां आए थे, नारायण रूप में, तो गोपिया पूछती है भगवान आप बताओ कृष्ण कहां है। उस टाइम पे वो माधुर्य भाव है। और एक श्लोक आता है और राधा गोविंद महाराज उस गीत गोपी गीत का बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि जो भी गोपियां बोल रही थी उसमें दो भाव था, एक बाहरी भाव और एक आंतरिक भाव था। न खलु गोपिका नंदनो भुवान, आप ये बोल रहे थे कि आप न खलु गोपिका, उस गोपिका यशोदा के पुत्र नहीं हो आप, नंदनो भुवान आप नंदन के पुत्र नहीं। तो इसमें दो भाव था राधागोविंद महाराज बताते, एक भाव यह था कि आप परमात्मा हो आप भगवान हो आप सब हो, लेकिन दूसरा भाव यह क्या है कि हम जो कृष्ण को जानते हैं वो इतने निर्दयी नहीं थे कि हमको वन में अकेले छोड़ के चले जावे, हमारे कृष्ण तो बहुत प्रेमल हो। कभी कभी क्या होता है अगर पत्नी पति का गुणगान करना चालू कर देवे तो समझने का कुछ डेंजर है। उसमें कुछ भाव अलग ही रहेगा, उसमें दूसरा भाव रहेगा, लेकिन बोलते हैं भाई अभी तक तो गुणगान, अभी क्यों गुणगान कर रही है सबके सामने, मतलब तुम आओ बाद में दिखाती हूं मैं। जैसे एक आता है ये अपना कथा नरसिंह मेहता का कथा, नरसिंह मेहता बहुत सुंदर कथा है, 5-10 मिनट में हम 5 मिनट में खत्म करेंगे। कैसे वो जब उनका श्राद्ध होना था, क्या होना था श्राद्ध, और घर में कुछ नहीं था, कपड़े भी ठीक नहीं थे नरसिंह मेहता के, और श्राद्ध के लिए घी भी उधारी से लेने जा रहे थे कि भाई घी और एक ब्राह्मण को बुला लेंगे, पत्नी बोली कि घर में तो कुछ है नहीं उधारी से लेके आ जाओ। तो गए मार्केट में और मार्केट में जो घी वाले पहले बोले भाई तुम्हारा उधारी बहुत हो गया, क्या हो गया बहुत उधारी हो गया है आप कृपया करके नहीं, तो एक दुकान वाले ने लास्ट में बोला ठीक है तुम भजन करने में अच्छे हो अब भजन करो, तब तक क्या बोले और भजन होने के बाद लेके जाना। तो भजन में लग गए, गीत में लग गए नरसिंह मेहता, और इतने डूब गए कीर्तन में और इसमें कि वो भूल गए कि घर पे श्राद्ध का प्रोग्राम है। अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जनाः परिउपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यम्। भगवान को चिंता हो गई कि उसका प्रोग्राम करना है, और ये सब स्टोरी जूनागढ़ में हकीकत है। और ये जो शिव संप्रदाय से आते हैं नरसिंह मेहता, जैसे हम ब्रह्मा मध्य तो ये जो शिव जी का संप्रदाय है उनसे है ये। तो वो वहां पे भजन में लग गए, भगवान को चिंता हुई कि उनका प्रोग्राम कंप्लीट करना है, वो वहां पे सभी अपने राजा रानी को लेके आ गए, सब आ गए, और आते आते पूरे गांव के जितने ब्राह्मण थे, जितने लोग थे, सबको इन्विटेशन देके आए कि मेरे घर में, और सब गांव वाले हंसने लगे, चलो आज जाके मजाक हो जाएगा, क्या हो जाएगा। और ये आ गए, और उसकी पत्नी घर पे बहुत टाइम से रुकी हुई है, और भगवान नरसिंह मेहता का रूप लेके उनके घर में एंट्री की है, साथ में राधा रानी आई, सब आई पूरा, और एंट्री करने लगे, बोलते मैंने सबको इनवाइट करके आया हूं। अरे तुमको एक कटोरी घी लाने को बोला था, ये सबको इनवाइट कहां से होगा। नहीं नहीं नहीं, हो जाएगा, सब हो जाएगा, चिंता मत करो, मैंने अरेंज कर दिया हूं। वो पत्नी बोल रही है, अरेंज कहां से किया, कुछ है नहीं, और आप ये ऐसा क्या क्या कर रहे हो। तो सब तक पूरे कुक आ गए, सब आ गए, सब जितने भी गोपियां थी वो सब कुकिंग करना चालू कर दिए, सब अंदर प्रोग्राम फर्स्ट क्लास होने लग गया। और हैरान पत्नी, वो बोल रही है ये सब कहां से हो रहा है, कैसे हो रहा है। और उस टाइम पे सब ब्राह्मण भी आ गए, सबको बिठाना चालू कर दिया, कुकिंग हो गया रेडी। फिर भगवान बोले, भाई सब प्लेट लेके आओ, सोने की प्लेट। क्या बोले वो पत्नी, बोल रही है प्लेट सोने की, अरे इधर नॉर्मल प्लेट नहीं, हमारे घर में सोने की तो है, आप लेके आओ, भगवान के पीछे रखी हुई है। वो गई और वहां प्लेट निकली, बोलते आज तक बताया क्यों नहीं मुझे। और वो बहुत गुस्से में हो रही है, मतलब हर टाइम पे वो क्या हो रहे हैं, गुस्सा हो रही है। और वहां पे सबको सोने की प्लेट दिए जा रही है, और इन लोग भक्त लोग परोस रहे हैं, और भगवान परोस रहे हैं, जितना इतना खाना गया, इतना खाना गया, इतना खाना गया, बोलते हैं कि वो लड्डू इतने, अभी ये पार्षद लोग बनाएंगे तो कैसे होगा खाना, कभी नहीं खाया, और गुणगान गा रहे, इसका गा रहे, और बहुत खुश हो गए, श्राद्ध प्रोग्राम फर्स्ट क्लास हो गया, सब जा रहे, लेकिन सबकी पजे प्लेट की पर नजर है, सोने की प्लेट के ऊपर, जितने भी ब्राह्मण है। तो नरसिंह मेहता के रूप में भगवान बोले, लेके जाओ लेके जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसे पत्नी बोलते, अरे ये क्या। बोलते अभी ये सब प्रोग्राम होने दो, फिर मैं देखती हूं तुमको क्या है ये सब नाटक है। और उसके बाद भगवान बोलते, मैं अभी एक मिनट में आता हूं, और प्रोग्राम होने का भगवान निकल गए, और उधर नरसिंह मेहता का भजन समाप्त हुआ, वो ध्यान में आए, और फिर वो बोले ठीक है ये लोटी घी लेके जाओ। क्या बोले, अभी ये पत्नी खड़ी है दरवाजे पे, और नरसिंह मेहता आए, वो बोलते भाई साहब ये घी की ये लो, मैं आपने मंगाया था ना, वो एकदम भड़क गई, ये क्या नाटक चल रहा है, बोल रहा है। बोलता है आप अभी अभी पूरा श्राद्ध प्रोग्राम किया, ये किया, सोने की प्लेट में खिला, ये किया, हाँ इधर कपड़े पहनने के लिए नहीं, और तुम ये सब नाटक कर रहे हो, और अभी तुम ये कटोरी लेके आ रहे हो, हाँ ये क्या कर रहे हो तुम। तब बोला कि मैं नहीं, मैं तो उधर था, मैं नहीं आया। बोलता है नहीं, हो गया, सब हो गया, देखो ये सब हो गया, सब ये कर रहे। तब ध्यान में आया कि स्वयं मेरे भगवान आए मेरे लिए काम करने के लिए, मेरा कार्य करने के लिए। और फिर वो भागते भागते गए पत्नी के साथ, बोलते मैं नहीं हूं, किधर गए, कहां गए। तो कुंड पे है, आज भी वो दामोदर कुंड है वहां पे गिरनार में, वहां गए और वहां पे भगवान से प्रार्थना की, सबको खिलाए, आप खाली खाए बे कैसे जा सकते हो, मेरा श्राद्ध प्रोग्राम पूरा नहीं होगा। और भगवान आए और श्राद्ध प्रोग्राम पूरा किए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो ये रहना चाहिए, कमिटमेंट रहना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की। धन्यवाद।